دونوں کی آج آج سے آٹھ دن تک اکیس بار سن لیجیے نو دن کی اشٹانی کا کبھی کبھی اپنے کو ایسا لگتا ہے ایک دن بھی اڑ گیا لیکن بھاگ گئے آپ لوگ یہیں سے ایسی بھاونا بھاتے ہیں اور اشٹانی کا پرو کے اس سوادھیا شنکھلا کے کرم میں سمے سات پرماتم کو اپن لوگوں نے چنا ہے پرات کالین سوادھیا اور اس میں بھی بہت مہتوپورن وشے भगवान जिनेन्द्र की निश्चय स्थिति का विषय है क्योंकि नंदेश्वर द्वीप में जो समय दृष्टि धर्मात्मा देव जाते हैं और आठ दिन तक लगातार भगवान की पूजा भक्ति इत्यादि के कार्यक्रम में वो संलग्न रहते हैं उनको कैसी अंतरंग में कैसी निश्चय स्थिति प्रकट रहती है और वो कैसे प्रकट होती है वो सारी बात उस समय सार परमात्म में चलने वाली है। समय सार नाम सुनते ही मोक्ष का हृदय रोमांचित हो जाता है और होना भी चाहिए। कुंद कुंद आचार्य देव की एक ऐसी रचना जो उन्होंने एकदम अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव है निपट अज्ञानी जिसे अपनी भाषा में कहिए ऐसे निपट अज्ञानी जीव के लिए आचार्य कुंद कुंद देव ने एक समय सार परमात्म की रचना की और इस समय सार की महिमा करते हुए समय सार स्तुति में कहा गया कि ग्रंथादि राज तारात्मा भावो ब्रह्मांड नाम है। कभी कभी अपने को विचार आता है देखो कुंद कुंद आचार्य बहुत से लोग ये कहते हैं कि कुंद कुंद आचार्य आध्यात्मिक उन लोगों का भ्रम कुंद कुंद आचार्य अध्यात्म के तो जोरदार ज्ञाता थे ही सजमान योग की जो मर्यादाएं हैं अष्टकोण में जिनमें उन्होंने कुछ मर्यादाओं को स्थापित किया है दर्शन के भी वो जबरदस्त विद्वान थे और सबसे बड़ी बात ये कर्णान योग का भी उनको विशेष ज्ञान था और उसका प्रमाण है षटखंडागम शास्त्र पर तीन खंडों पर लिखी गई उनकी परिकल्पति का। कभी कभी अपने को ये विचार आता है कि यदि कुंद कुंद आचार्य भी कर्णान योग के ग्रंथ या अन्य अनुयोग के ग्रंथ लिखते और समय सार जैसा परमागम यदि उनकी वाणी से नहीं लिखा जाता तो क्या होगा। ये जो धारा चली है अध्यात्म की ये समय सार की लेखनी के बाद समय सार के अवतरण के बाद एक पूरी आचार्य परंपरा में एक धारा बदल गई अध्यात्म की धारा ने मोड़ लिया और यह समय सार परमागम ही है जिसने भगवान कुंद कुंद आचार्य को गौतम धनधर के बाद स्थापित किए। आप सोचो जरा इस बात को भगवान कुंद कुंद आचार्य के पहले से मंगलाचरण नहीं बना होगा ये तो पक्का है। तो भगवान कुंद कुंद आचार्य की ऐसी कौन सी विशेषता अगर हम षटखंडागम की टीका की बात करें तो फिर षटखंडागम के जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा ये दिगंबर प्रतिमा है, अगर कुंद कुंद आचार्य का उल्लेख उस प्रतिमा पर प्रशस्ति में ना हो, मूल सत्य कुंद कुंद आमनाय ये उल्लेख नहीं हो, आप और हम ये पहचान भी नहीं कर पाएंगे कि दिगंबर प्रतिमा है, क्योंकि हो सकता है कि उसका कुंद किसी ने रूप बिगाड़ दिया। लेकिन अगर कुंद कुंद आमनाय लिखा है वो पहचान होती है दिगंबर परंपरा की। मंगलाचरण अपन लोग करते हैं जिनवाणी पढ़ते समय, वहां पर अपने को एक जैसे होता है कोई भी शपथ ग्रहण होता है, आपको जिनवाणी पढ़ने वालों का एक शपथ ग्रहण जैसा होता है, इसे हमें ये घोषित करना पड़ता है कि ये जो ग्रंथ हम वाचन कर रहे हैं इस ग्रंथ के मूल कर्ता सर्वज्ञ देव, अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता गंधर्व देवा, उसके बाद ये सर्वज्ञ देव ने कहा, गंधर्व देव ने इसकी रचना की, अर्थात उनकी द्वादशांग वाणी में ये आया और उनके द्वारा रचित ये ग्रंथ कुंद कुंद आचार्य की आमनाय ने, मतलब ये बताना पड़ता है कि कुंद कुंद आचार्य की आमनाय में हुए अमुक आचार्य अमुक उपाध्याय मुनि श्रावक समय दृष्टि के द्वारा रचित ये ग्रंथ है, उसने चिनवाणी की प्रमाणिकता के लिए भी भगवान सर्वज्ञ देव गंधर्व देव के समान ही कुंद आचार्य देव की भी साक्षी देनी पड़ती कि उनकी परंपरा से देव गुरु शास्त्रों या अभिगुरु की चर्चा करें तो जब मुनिराज की दीक्षा विधि होती है तो मुनिराज की दीक्षा विधि में इस बात को बताया जाता है कुंद आमनाय में दीक्षित करते, एक तरह से देव गुरु और शास्त्र की पहचान दिगंबर परंपरा में कुंद कुंद बन गए। इसीलिए कविवर वृंदावन दास जी ने लिखा है न हो हुए न है न होएंगे मुनिंद्र कुंद कुंद, ये उनके प्रति उनका बहुमान है। दर्शन सार के रचना का पंडित ने लिखा, हमने तो बोले थे इधर पंडित ने लिखा, दर्शन सार के रचनाकार देवसेन आचार्य समर्थ आचार्य उनको ये लिखना पड़ा कि यदि पद्मनंदी नाथ अर्थात कुंद कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र में विराजमान सुनंदर परमात्मा के दर्शन करके ये दिव्य ज्ञान नहीं लाते और हमें ये दिव्य ज्ञान जिनवाणी के माध्यम से नहीं देते, हम लोग मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे जानते, देव से न आचार्य की तरह। ऐसे बहुत से उल्लेख आचार्य कुंद कुंद की महिमा के लिए है और अपन लोगों को तो इसलिए उनका बहुमान आया कि भाई उन्होंने उस मोक्ष मार्ग के उस स्थल को उन्होंने भरा जिनवाणी को चार अनियोग में है और कुंद कुंद आचार्य के पहले सत्खंडागम आदि ग्रंथों की रचना हो चुकी, अध्यात्म का क्षेत्र खाली था और जैन दर्शन का जो मूल है जो मोक्ष मार्ग है वास्तव में वो तो अध्यात्म ग्रंथ है, अध्यात्म मोक्ष मार्ग तो अध्यात्म के बिना संभव नहीं है, तो उस स्थल को उन्होंने भरा और उनकी रचना से रचित उनकी लेखनी से लिखा गया किसी धन्य घड़ी में उनको ये विकल्प आया। देखो समय सार लिखने का विकल्प ही कुंद कुंद आचार्य के लिए धन्य नहीं हो सकते, तो विकल्प है ना, कुंद कुंद आचार्य उसे कैसे भला मान सकते हैं, और जो उस शुभ राग के विकल्प को भला माने वो तो समय दृष्टि भी नहीं हो सकता, तो बुरी गांव से हो सकता है, तो उनके लिए भले ही वो विकल्प कुछ भी रहा हो जाएगा नहीं आएगा, लेकिन हमारे लिए उनका यह विकल्प कोई अद्भुत काम कर गया और हमें एक समय सार जैसा परमानंद मिल गया। भूमिका लेते हैं, 1000 साल तक इस परमानंद की किसी ने टीका नहीं ली, या लिखी हो तो अपने को उपलब्ध नहीं ये मान लो, लेकिन जहां तक उपलब्ध तथ्य है 1000 साल के बाद भगवान कुंद कुंद आचार्य के टीकाकार समर्थ आचार्य अमृतचंद्र बाद मानव पूर्व भव के संस्कार उनके झुंझे हो गए हों, तो उनने उस सेठ से ये कहा, सेठ यह अशरीरी होने का शास्त्र, अशरीरी होने का शास्त्र माने सिद्ध बनना हो ना तुम्हें, संसार का अभाव करना हो उसके लिए ये शास्त्र विचार करना हो। श्वेतांबर संप्रदाय को मान्य 45 आगम और स्थानकवासी संप्रदाय को मान्य 32 आगमों का गुरुदेव ने गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया। एक चातुर्मास में 5 महीने का चातुर्मास था, उसे पूरे 45 आगम पर डाले। भगवती सूत्र को तो गुरुदेव ने 17 बार, लेकिन जिस संप्रदाय में थे और जिस संप्रदाय के आगमों का इतनी गहराई से अध्ययन किया, उसके बाद भी उनके मुख से किसी आगम में उनके किसी आगम के लिए ये शब्द नहीं निकला कि यह सत्य होने का, बल्कि वो बोलते थे जैसे जैसे मैं इन आगमों को पढ़ता हूँ मेरी शंका का समाधान होने के बजाय मुझे और शंकाएं उत्पन्न होती, और जब समय सर हाथ में आया था कुछ पन्ने पलट कर वो 5 मिनट में तो रिजल्ट निकाल करके दे दिया, सेठ ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है, और उसके बाद जो हुआ वो अपन लोगों से छिपा नहीं। हमारा सौभाग्य है इस जीवन में पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म शताब्दी मनाने का सौभाग्य, कुंद आचार्य के 20 सहस्त्राब्दी मनाने का सौभाग्य, गुरुदेव श्री की 125वीं जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य अपने को इस जीवन में अपने जीवन में मिला, और अभी अगला जो मार्च महीना अपना आने वाला है उसमें गुरुदेव श्री को समय सार की प्राप्ति का शताब्दी वर्ष मनाने का सौभाग्य अपने को प्राप्त होगा। हमारा कर्तव्य है कि गुरुदेव ने समय सार पाकड़ के जो 19 बार उन्होंने हमारे समय सार ग्रंथाली राष्ट्र करके लगभग उपलब्ध 10,000 घंटों के प्रवचनों में से 3,500-4,000 घंटे के प्रवचन अकेले समय सार तो जो निधियां अपने को दिए हैं, अपन आज अष्टामिका महापर्व के अवसर पर इस बात के लिए संकल्पबद्ध हो कि गुरुदेव श्री के इस समय सार शताब्दी वर्ष के दौरान हम समय सार का गुरुदेव श्री के प्रवचनों के साथ, आप कोई भी एक बार का प्रवचन सुन लीजिए, उसके साथ आप जो 500 स्वाध्याय करेंगे, और गुरुदेव श्री की उपस्थिति में जो समय सार जिस मूल रूप में प्रकाशित होगा था, वो अपने आप को सिद्ध मान करके ये ग्रंथ सुनना, मैं सिद्ध को वंदन करता हूँ तुम्हारी आत्मा में और हम अपनी आत्मा में, श्रोता आचार्य भगवान कहते हैं हम अपनी आत्मा में और अपने श्रोताओं की आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना। ये कहकर के कितनी बड़ी बात नहीं थी, आचार्य देव ने हमारी योग्यता का मूल्यांकन इतना जबरदस्त किया कि वे हमें सिद्ध से कम नहीं देखते, वे हमारी प्रगति में सिद्धों अनंत सिद्धों की स्थापना करने योग्य हमें देखते हैं और हमारे ये बोल बंद नहीं होते, वो तो ठीक है लेकिन अभी तो मैं पावर हूँ, वो तो ठीक है लेकिन अभी तो मुझे अनेक प्रकार से अपन रोना रोते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं तेरी पर्याय की सामर्थ्य का, तेरी हर परिस्थिति का हमें ज्ञान है और उसके बाद भी हम तुझ में सिद्धत्व की स्थापना करते हैं, बोल हम क्या सीख। देखो आचार्य देव ने अपने अंदर में सिद्धत्व की स्थापना कर दी, उन्होंने तो अपनी ओर से कर दी लेकिन उनकी स्थापना हमारे सामने कब तक नहीं आएगी, जब तक हम अपने आप में सिद्धत्व की स्थापना न करें। जब हम अपने में सिद्धत्व की स्थापना करेंगे अर्थात मैं सिद्ध समान स्वभाव से और पर्याय में सिद्धत्व प्राप्त करना ये मेरा परम कर्तव्य, ऐसी भावना के साथ इसने साथ हम को नहीं सुनेंगे तब तक की बात बनने वाली नहीं है। ठीक है, समय सार परमानंद पहली गाथा से लेकर बारह गाथा तक इस समय सार परमानंद की पीठिका, पीठिका का मतलब क्या है, संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों के लिए समय सार बारह गाथा में पूरा हो जाता है। जो बात बारह गाथाओं में कही गई, एक से लगा के बारह गाथाओं में जो बात कही गई वही बात का विस्तार 38 नंबर तक की गाथा में मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए सुनना क्या कहा, एक गाथा एक से लेकर गाथा बारह ये सामान्य संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों के लिए बात कही और उसके बाद 13 नंबर की गाथा से उसका विस्तार दिया, वो भी 38 नंबर की गाथा तक मध्यम रुचि वाले शिष्य के लिए समझदार आचार्य देव ने पूरा किया। और 38 गाथा में भी किसी को समझ में नहीं आवे तो फिर 415 गाथा में उसका विस्तार किया और आपको पता है पूरा समय सार मात्र एक शब्द पर खड़ा है और वो शब्द क्या है, आचार्य भगवान ने एक मार्मिक बात कही थी, भैया मैं अपने संपूर्ण निज वैभव से एकत्र विभक्त शुद्धात्मा का स्वरूप बताऊं, बस ये जो एकत्र विभक्त स्वरूप है, एकत्र विभक्त ये एक ऐसा शब्द है, इस एक शब्द पर ये पूरा समय सार परमानंद रचा गया, मैं अपने से अपने 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 से एक एक में हूं और मैं जिन जिन से भिन्न हूं उनकी विभक्तता और अपने स्वरूप की एकता, विभक्तता का ज्ञान क्यों कराया, भिन्न ये मुझसे भिन्न है तो जो मुझसे भिन्न है उसका ज्ञान क्यों कराया, क्योंकि तो मैं उन्हें अपने साथ एक एक करके मानता, अगर मैं उनको एक मेट नहीं मानता तो फिर उनकी भिन्नता का ज्ञान कराने की आवश्यकता नहीं। जब द्रव्य संग्रह में अजीब द्रव्य का वर्णन किया पूछा किसने ने कि प्रभु अजीब का वर्णन क्यों करते हो, जब मैं जीव हूं और जीव के आश्रय से मेरा प्रयोजन बढ़ेगा अजीब का वर्णन क्यों करते हो, यदि तुमने अजीब को जीव नहीं माना होगा, क्या क्या, क्या कहते, यदि तुमने अजीब को जीव नहीं माना होता तो हम अजीब का निरूपण भी नहीं, ये जीव नहीं है ये अजीव है, इसलिए हम उसका निरूपण कर रहे हैं कि तुमने इसमें जीव बने की भ्रांति की और तुम अपने जीव स्वरूप को भूल गए, ऐसा जो मैग्नीशियम लाइट हाउस से दर्शाने की प्रतिज्ञा भगवान सूर्य कुंडल आचार्य ने दी थी। और उसके बाद छठी नंबर की गाथा थी, इस समय साहब का प्रारंभ हुआ और सच में तो छठी और सातवीं गाथा में, इन दो गाथाओं में आचार्य देव ने अपनी प्रतिज्ञा का पूरा निर्वहन कर दिया। उसके बाद विस्तार आता गया और 17-18 नंबर तक की गाथा में जो विषय आया सातवीं सिद्धि का मार्ग बताया। अपने को 31, 32 और 35 गाथा से चर्चा करनी है तो आचार्य देव को 31 गाथा तक आचार्य देव कैसे पहुंचे, उसके जो बीज है 31 गाथा के जो बीज है वो 19 नंबर की गाथा से करें। और 19 नंबर की गाथा में आचार्य देव से एक प्रश्न किया कि यह आत्मा कितने समय तक अज्ञानी रहेगा। अपन 31-32 गाथा का पहले का विषय उसको थोड़ा संक्षिप्त में समझते हैं और उसके बाद वो गाथा अपनी शुरू होगी, क्योंकि इस भूमिका के बेस पर वो 31-32 नंबर की गाथा का 33 नंबर की गाथा का जन्म हुआ वो जानना बहुत आवश्यक। तो उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही कि देखो इस आत्मा को अज्ञानी करने वाला जगत में दूसरा कोई नहीं, कोई कर्म का उदय आत्मा को अज्ञानी करे, कोई बाहर की परिस्थिति आत्मा को अज्ञानी करे और कोई इस आत्मा को दूसरा ज्ञानी बनावे ऐसा नहीं। जब तक यह आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म लोक कर्म यह मैं और मुझ में द्रव्य कर्म भाव कर्म और लोक कर्म है ऐसा अयथार्थ सिद्धांत करेगा तब तक वह अज्ञानी रहेगा। अज्ञानी की बहुत सामान्य परिभाषा, बहुत सारगर्भित परिभाषा, जो अपना नहीं है उसमें अपनापन, इसका नाम अज्ञानी। और जो अपना है उसमें अपनापन, इसका नाम ज्ञान। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14 नंबर की गाथा में अपन जाते हैं। हृदय श्री ने समय सार परमानंद के अंत में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14 नंबर की गाथा लगाई, आप कोई भी देखेंगे समय सार को मिलेगा। उसमें उन्होंने कहा यह आत्मा कर्म कृत रागादि और शरीर आदि में उनसे असंयुक्त होने पर भी, क्या शब्द का प्रयोग किया, कर्म कृत रागादि और शरीर आदि से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है। तो कहते हैं यह प्रतिभास क्या है, کمپنی والوں سے گارنٹی کسی کا وارنٹی تو ہم کو چیز خراب ہو جائے گی تو بتا دیں جو بھی سسٹم ہوگا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تم اس جڑ پدارتھ کی گارنٹی چاہ رہے ہو کس کی؟ 7 سال کی گارنٹی، 10 سال کی گارنٹی والا آیا، 7 سال کی گارنٹی والا یہ فری سننا جان دو، اور 10 سال کی گارنٹی والا یہ فری دو کا جیسے ہی 7 سال کی، اس کی 10 سال کی، لیکن 10 سال والے کے لیے 3000 روپے آپ کو قیمت زیادہ دیں گے. ہم کیا کریں گے؟ ہاں 3000 تو لگ رہے ہیں نا، لیکن یہ بتاؤ 10 سال کا 10 دن بھی اس سے بولنے کے لیے تمہاری کتنی گارنٹی ہے؟ تو فریج یہ پوچھے ہم سے تمہاری کتنی گارنٹی ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ لیکن ہم ایسے سنکلپ وکلپ کے گھوڑے دوڑاتے ہیں ورتمان میں، بھوشیہ کال کا سنکلپ کرتے ہیں، بھوشیہ میں یہ میرا ہوگا، ایسا ہوگا، ایک روپا وہ کروں گا، بھوت کال میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، یہ میں نے میرا یہ سب، اور ورتمان میں تو جی رہے سنکلپ وکلپوں میں. تو ورتمان کے سنکلپ وکلپوں میں تینوں کال کے پرسنارتھوں کے سمجھ میں اپنے پنے کا ابھپرائے رکھ کر کے جی رہے ہیں. کہتے ہیں یہ اجانی اس نے لکھا لاسٹ میں ایسار آپ وکلپ ایسا مونڈ جی وہی آ کرے بھوتارتھ جانن آر جانی یہ وکلپ نہیں. یہ بات کہنے کے بعد پھر دیکھو وہ سب ہم بولتے کہ سمے سار کنڈیوں کے لیے سمے سار گرستوں کو پڑھنے کے لائق نہیں ہے نا. اس میں آچاریہ امرت چند کا ایک شبد دیکھیے، یہ ہے گاتھا نمبر 23, 24 اور 25 کی اپودھاگ ہے. اس میں آچاریہ امرت چندر دیو کہہ رہے ہیں، اور آچاریہ امرت چندر کے شبد میں دھیان دیجیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتھا اتھا پرتی بدھ بودھنائے ویوسائے کریتے. امرت چندر آچاریہ کہہ رہے ہیں اب ہم پرتی بدھ جیو کو سمجھانے کا سمجھانے کے لیے پریاس کرتے ہیں. آپ پرتیبدھ شبد کا پریوگ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں آپ پرتیبدھ مانے جس نے آج تک اپنے بھگوان آتما کا پر سے بھن بھگوان آتما کا ایکتو وبکت بھگوان آتما کا سہج جائت بھاؤ کا بھوتارتھ سبھاؤ کا سامانیہ سبھاؤ کا انوبھو درشٹی گیان اور انوبھوتی نہیں کی ایسے اپرتیبدھ جیو کو سمجھانے کے لیے. کیا سمجھانے کے لیے؟ کہ دیکھ بھیا جو تیرے مان رکھا ہے نا انادی کال سے، انادی کال کی جو پرمپرا چلی آ رہی ہو اسے چھوڑتے نہیں ہے. یہ سمجھانے کے لیے؟ کیا سمجھانے کے لیے؟ یہ سمجھانے کے لیے دیکھ تو انادی کال سے جو مانتا آ رہا ہے نا انادی کال کی مانتا کو چھوڑنا مت. یہ سمجھانے کے لیے یا یہ سمجھانے کے لیے انادی کال سے جو وپریت مانتا آیا ہے وپریت مانتا کرتا آیا ہے اور جس نے تیرا بھو بھرمن چل رہا ہے اب تو اس مانتا کو چھوڑ. اور پھر کیا شبد کا پریوگ کیا؟ سمجھانے کے لیے پریتن کرتے ہیں. اوپر شبد کا پریوگ کا سنسکرت میں شبد تھا ویوسایا کریتے، ہم کو اپنا پریتن کرتے ہیں. یعنی آچاریہ دیو کو اس بات کا ابھیمان نہیں ہے، اس بات کا کرتب تو نہیں ہے، ہم اجانی کو سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں ہم اپنا پریت کرتے ہیں، ہم اپنا ویوسائے کرتے ہیں. سمجھنا نہیں سمجھنا، ماننا نہیں ماننا، کہ وہ اس کے اپنے اس میں میرے کو ہم تو نہیں کر سکتے. ہم اپنا وکلپ، ہمیں وکلپ آیا، ہمیں وکلپ آیا کہ جگت کے سب اجانی کی ہم نے سمجھانے کا وکلپ کر کے سمجھانے کا پریاس کر کے سچ میں اپنے وکلپ کا سمجھ لیا. ہم کو وکلپ آیا، ہم نے اپنا وکلپ پورا کیا. جگت کے جیووں کا بھاگیہ ہوگا سمجھیں گے، نہیں ہوگا تو آچاریہ بھگوان کیا سمجھائیں؟ بھگوان کے سمسرن میں جا کر انت بار یہ جیت پورا آ گیا. اسے اس کی فرماتے تھے کہ بڑی آگل ہے تو بولو، یہ کوئی آشچرے کی بات نہیں ہے. لیکن آچاریہ بھگوان کہتے ہیں کہ ہم سمجھانے کے لیے پریتن کرتے ہیں، اور اس سمجھانے کے لیے پریتن میں انہوں نے سروجیہ بھگوان کی ساکشی دی. دیکھو اب یہاں سے وہ 21ویں گاتا کی اور مڑتے ہیں، سروجیہ بھگوان کی ساکشی دے کر کے آچاریہ بھگوان आचार्य भगवान ने समझाया, पहले तो उसे समझाया सर्वज्ञ की साक्षी थी, सर्वज्ञ की साक्षी देने के बाद एक तो कितनी बढ़िया वाक्य, चार वाक्य हैं, सर्वज्ञ ज्ञान जिसे सदा उपयोग लक्षण जीव है, सर्वज्ञ की साक्षी। उसके बाद तर्क, तर्क दिया तर्क, आदम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, तर्क दिया कि वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा अने, और तर्क दिया जीव पुद्गल हो को और पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तू तब ही ऐसा कर सके है तू मेरा पुद्गल कर, वो बातें कही। एक सर्वज्ञ भगवान की साक्षी दी, सर्वज्ञ भगवान ने उपयोग लक्षण आत्मा दिखा है, सर्वज्ञ भगवान ने राग लक्षण आत्मा दिखा नहीं, सर्वज्ञ भगवान ने कर्म लक्षण आत्मा दिखा नहीं, सर्वज्ञ भगवान ने शरीर लक्षण आत्मा दिखा नहीं, शरीर सर्वज्ञ भगवान ने इंद्रिय लक्षण आत्मा दिखा नहीं, सर्वज्ञ भगवान ने मन लक्षण आत्मा दिखा नहीं। एक दूसरा, फिर निश्चय है और वचन है ये व्यवहार।